तो पिछली बार हम लोग भाव भक्ति के अध्याय में थे और बीच में हमने रोक दिया था। हाँ वही भाव भक्ति के लक्षण बता रहे थे। तो नौ लक्षणों का वर्णन करने के बाद यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी आगे बतला रहे हैं कि कई बार प्राकृत भक्तों में या भक्तों में भी इस प्रकार का भाव का आभास देखा जाता है। जैसे कि हम पीछे भी वर्णन कर चुके हैं, पांचांग भक्ति का पालन करते हुए प्राकृत भक्तों में भी भाव भक्ति का आभास दिखाई पड़ता है। और इसी के बारे में और वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी, ये बतलाते हुए कि ये जो लक्षण हैं आभास दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आभास होते हैं। एक होता है रति आभास यानी कि जो आभास है भाव भक्ति का आभास, ये दो भाग में बांटा गया। रति आभास को दो भाग में बांटा गया। रति आभास मतलब, रति का मतलब भाव और आभास का मतलब भाव आभास। तो रति आभास को दो भाग में विभाजित किया गया है और पहला है प्रतिबिंब आभास और दूसरा है छाया आभास। प्रतिबिंब आभास और दूसरा छाया आभास। प्रतिबिंब का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव अटैचमेंट कहते हैं उसको। जिस तरह से जब सूरज की किरणें जल में जलाशय में दिखाई पड़ती हैं, सूरज दिखाई पड़ता है, उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। तो प्रतिबिंब और दूसरा है छायाभास। छायाभास का मतलब कि अपना शैडो, जैसे आप अपनी परछाई देखते हैं, हाथ की परछाई देखते हैं, अपने शरीर की परछाई देखते हैं, उसको उस आभास को क्या कहते हैं, छाया आभास कहते हैं। तो प्रतिबिंब आभास में आभास ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और छायाभास में जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। अब वो कैसे आप सुनिएगा, अगर कोई भक्ति करता है, भक्ति के अंगों का पालन करता है किसी बाहरी उद्देश्य से, भौतिक लाभ हेतु या मुक्ति की इच्छा से, तो उस समय उद्देश्य तो क्या है, दूषित होता है, है ना। और इस कारण से यह अभ्यास भी जो है इतना प्रबल नहीं होता। और जब भक्ति के अंगों का पालन करते हैं और खासकर मैंने बताया पांचांग जो भक्ति है, पांचांग भक्ति याद है आपको, पांचांग भक्ति किसको याद है, सबको याद है, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति सेवा श्रद्धाया सेवा, तो ये पांचांग भक्ति है। तो इस प्रकार भक्तों के संग में रहकर, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर कोई प्राकृत भक्त, वो भले ही भारी उद्देश्य रखता हो, ज्ञान का मिश्रण, कर्म का मिश्रण, मुक्ति की इच्छा या कोई भौतिक सुख की इच्छा रखते हुए वो इन भक्ति के अंगों का पालन करता है, तो इस प्रकार के भाव भक्ति के लक्षण नजर आते हैं। आभास होता है उसको, आभास होता है, हृदय के दर्पण में ये प्रकट होता है, प्रतिबिंब उसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे जब आप अपने आप को देखते हैं शीशे में, देखते हैं जब शीशे में देखते हैं और शीशे में लाइट पड़ती है तो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब नजर आता है उसमें, जल में प्रतिबिंब नजर आता है। प्रतिबिंब का मतलब है अपना वास्तविक स्वरूप नहीं। प्रतिबिंब, बिंब का मतलब क्या होता है, स्वयं अपने आप को देख रहे, जब अपने आप को हम देख रहे हैं इस तरह से, उसको बिंब कहते हैं, या आपको मैं देख रहा हूं, लेकिन आपको मैं अगर शीशे में देखता हूं तो वो प्रतिबिंब कहलाता है। अब समझ इस बात को, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, शुद्ध भक्तों की संगति में, भक्तों की संगति में इस प्रकार का आभास होता है, इस प्रकार की जो भाव भक्ति की किरणें हैं दिखाई पड़ती हैं, शुद्ध भक्तों के प्रभाव से, शुद्ध भक्तों की कृपा से होता है। क्योंकि जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होगी यह आभास होगा नहीं। तो पांचांग भक्ति में कोई भी अंग हो, उसमें शुद्ध भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है। जैसे नाम संकीर्तन चल रहा है मान लीजिए, और शुद्ध भक्त भी कीर्तन कर रहे हैं, तो उस संकीर्तन में अगर हम भाग लेते हैं तो इस प्रकार का आभास होता है। हमारे अंदर भले कितने भी अनर्थ हो, भौतिक तृष्णा है और मुक्ति की इच्छा है, कई प्रकार के अनर्थ हैं, उसके बावजूद भी आपको आभास हो रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? शुद्ध भक्तों के कारण होता है, क्योंकि शुद्ध भक्तों के हृदय में जो भाव है वो उनकी वाणी से निकलता है, और वो भाव की किरणें आपके हृदय के दर्पण में प्रवेश करते हैं। इस कारण से भक्त लोग जो है वो भी रोमांचित होते हैं, वो भी नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं इत्यादि। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है समझना, कि शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहकर इस प्रकार का आभास होने लगता है। लेकिन छाया रति आभास का मतलब है जब कोई लौकिक सामाजिक, जिसको कहते हैं प्रथा के कारण, किसी उत्सव में भाग लेता है, या जब कई बार लोग जन्माष्टमी के उत्सव में वृंदावन जाते हैं, दिल्ली से कई लोग जाते हैं, या फिर दिल्ली से कई लोग बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं सोशल कन्वेंशन के कारण, या जन्माष्टमी में साल में लोग एक बार आते हैं, है ना, कई बार लोग बोलते हैं हम साल में एक बार आते हैं रेगुलर मंदिर, जन्माष्टमी के दिन हम रेगुलर आते हैं साल में एक बार, ये नियम है हमारा। तो जब आते हैं तो उससे क्या होता है उस समय, लेकिन उनका उद्देश्य जो है उसमें दूषित नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत होगा लेकिन इतना दूषित नहीं है, क्योंकि वो एक, हाँ ठीक है सब लोग जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, जन्माष्टमी है, दर्शन तो करने चाहिए भगवान के, तो लाखों लोग आते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ तो जन्माष्टमी के दिन होती है, इससे पता चलता है कि कृष्ण कितने यशस्वी हैं, है ना, इसी से पता चलता है कि कृष्ण परम भगवान, क्योंकि लोग हम सब भगवान के अंश हैं, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा आकर्षण भगवान कृष्ण के ओर होगा, ये स्वाभाविक है, और ये पता चलता है पूरे विश्व में जन्माष्टमी के दिन अधिक से अधिक तादाद में लोग मंदिर दर्शन करने आते हैं, और भी कई उत्सव होते हैं, रामनवमी होता है, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, लेकिन जन्माष्टमी ऐसा उत्सव है पता नहीं कहां से लोग आते हैं इतने सारे, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, हर साल भीड़ बढ़ती जाती है, तो कृष्ण आकर्षित करते हैं सबको। तो इस प्रकार छाया भास होता है, यानी कि जो वो आभास है, जैसे छाया अपनी परछाई देख रहे हैं आप, या किसी की परछाई आपने देखी, तो वो जो आभास है उसमें इंटेंसिटी कम है, यानी कि भाव भक्ति का जो आभास है वो इतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। और ऐसे में वो संकीर्तन में भाग लेते हैं, उत्सव में भाग लेते हैं, धाम जाते हैं जैसे हमने बताया, गोकुल जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन के कई लीला स्थलों में भी घूमते हैं, कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं खास करके लोग, है ना, हमने तो कई कुछ कई बार देखा जन्मभूमि देखा, लेकिन जब से वृंदावन गए या फिर बरसाना गए या फिर राधाकुंड गए, फिर मथुरा नहीं गए दोबारा, मथुरा फिर दोबारा जाने की इच्छा नहीं हुई, वृंदावन जाने की इच्छा हुई सब। आज भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं कार्तिक में भी, है ना, साधना स्थली इस बार वृंदावन में है, मथुरा में नहीं, साधना का जो केंद्र हमने बनाया वृंदावन को, मथुरा में क्यों नहीं बनाया, सब वृंदावन वासी यहाँ पर बैठे हुए जितने भाव। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो छाया भास है, इसका आभास होता है अगर कोई शुद्ध भक्त का संग करता है, छायाभास हो या प्रतिबिंब आभास हो, दोनों ही स्थिति में शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए होती है, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में इस प्रकार का आभास होता है, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में होता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई मथुरा जाता है, बरसाने जाते हैं राधाष्टमी के दिन, एक रात पहले पूरी रात वहां पर कीर्तन चलता है, राधे राधे चलता है, नाना प्रकार की मंडलियां आती हैं वहां पर, दिल्ली से, राजस्थान से, तो कई बार हम लोग भी गए, पूरी रात बैठे रहे छत के ऊपर, नीचे राधे राधे चल रहा है, हम ऊपर बैठे छत में, और 5 बजे करीब अभिषेक जब होने लगता है राधा रानी का, तो उस समय दूरबीन से हम लोग देखते हैं अभिषेक, क्योंकि आप नीचे नहीं जा सकते, नीचे आप खड़े भी नहीं हो सकते, एक जगह पर खड़े होते ही आप कभी आगे जाएंगे तो कभी पीछे, कभी आगे तो कभी पीछे, भीड़ नहीं होती है। और राधा रानी के दर्शन होते हैं और 5 बजे करीब, ठीक आप मानेंगे नहीं, प्रत्येक वर्ष जब जब हम गए हम देखा अभिषेक के दौरान बारिश शुरू हो जाती है, जैसे ही अभिषेक होता है ऊपर से बारिश शुरू होती है, और जैसे ही अभिषेक समाप्त होता है कुछ ही मिनटों में बारिश बंद हो जाती है। ये प्रत्येक वर्ष होता है, जो जाते हैं वो लोग इसका अनुभव कर सकते हैं, उन्होंने किया होगा जिन्होंने देखा है। ठीक 5 बजे बरसात होगी, अभिषेक हो रहा है, बरसात हो रही है, वहां से इंद्रदेव भी बरसात कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, राधा रानी का अभिषेक कर रहे हैं, है ना, वो भी पूरा इसका लाभ उठा रहे हैं। नहीं तो 5 बजे प्रातः काल उसी दिन क्यों अभिषेक, बारिश हो रही है, उसका क्या कारण है? प्रत्येक वर्ष होता है। तो इस अभिषेक के बाद कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय के बाद बारिश रुक जाती है, और उसके बाद भक्त लोग जो है परिक्रमा इत्यादि करके वहां से चल पड़ते हैं। तो इसको कहते हैं छाया आभास कहते हैं। तो इसमें जो है आभास की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, और इस रति आभास को वास्तविक आभास में, यानी कि भाव भक्ति के स्तर पर हम कैसे पहुंचे, भाव भक्ति के स्तर पर कैसे पहुंचे, तो यहां पर श्रील प्रभुपाद ने प्रारंभ में कुछ बातें बताई हैं। यहां बता रहे प्रभुपाद बता रहे हैं, जब किसी, हाँ तो यहां पर ये बताया कि प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर कोई क्रमशः विकास करता है और वास्तव में भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचता है, क्योंकि प्रोसेस से तो सबको गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है, लेकिन अपराध रहित होकर। जैसे नाम आभास भी होता है, नाम का भी आभास होता है, शुद्ध नाम का आभास होता है। अजामिल के केस में क्या हुआ, शुद्ध नाम का आभास हुआ उनको, शुद्ध नाम नहीं लिया लेकिन नाम का आभास हुआ, वो अपने बच्चे को पुकार रहे थे कि नाम कितनी महिमा है, कि जैसे ही उन्होंने नारायण करके उच्चारण किया तो विश्वदूत आ गए, यमदूत भी आए, विश्वदूत भी आ गए, लेकिन विश्वदूतों की कृपा से अजामिल तर गए, और विश्वदूतों की कृपा से यमदूत भी तर गए। यमदूतों को पहली बार साधु संघ प्राप्त हुआ, यमदूतों को इतना बड़ा अवसर शायद पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था, वो चकित हो गए देखकर, अरे ये कौन से लोग हैं, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदापद में, इनके हाथों में कहां से आ गया अचानक, किया आज तक तो हमें कोई नहीं रोका, और देख के घबरा गए लोग, यमदूत घबरा के, बताइए यमदूत किसे घबराते हैं, यमदूत को लोग देख के घबराते हैं। तो यमदूत सोचने लगे क्या है, कहां से है। तो इस तरह से वो कई प्रश्न पूछे यमदूतों से, लेकिन यमदूत ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके जो स्वामी हैं उनसे आप पूछिए, वो धर्मराज है, वो आपको उत्तर देंगे। तो इस प्रकार विश्वदूतों की कृपा से अजामिल को वास्तव में लाभ पहुंचा, और आभास की स्थिति से वो आगे बढ़े और वास्तव में भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचे, और शुद्ध नाम लेकर वो उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई, हरिद्वार में जाकर दोबारा जीवन प्राप्त हुआ उनको। तो आभास के बाद अपराध नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट। आभास कैसा भी हो, कोई भी आभास हो, संकेत आभास, हेला नामाभास, स्थोभ नामाभास, और कौन सा नामाभास है, हाँ श्रद्धा नामाभास, असली नामाभास, तो ये नाना प्रकार के नामाभास, कोई भी नामाभास हो लेकिन अपराध रहित होना चाहिए, उसके बाद अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध हो गया तो फिर से वापस आ जाएंगे उसी समय नाम अपराध की स्थिति में आ जाएंगे, फिर नाम अपराध के स्तर पर हम लोग हरिनाम लेना शुरू करेंगे, और फिर अपराधों से बचकर धीरे 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 फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कहीं जाकर फिर आसक्ति के स्तर पर पहुंच के फिर भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच पाएंगे, और बीच में कहीं अगर फिर से आभास हुआ तो फिर से हमें ध्यान रखना है कि दोबारा अपराध ना हो। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम लोग क्या करते रहते हैं, आभास होता रहता है, अपराध होता रहता है। अपराध से कई बार बच जाते हैं, आभास होता है, फिर अपराध कर देते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम लोग, हमारा जो, हमारी जो गति है, स्पीड है, वो बहुत धीमी रह जाती है। लेकिन कोई आभास के बाद अगर अपराध नहीं करता, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहकर शुद्ध भक्तों की सेवा करता रहता है, तो अजामिल के साथ जो जैसे हुआ, अजामिल ने तो पूरे जीवन पर पाप किया, और लेकिन नारायण नामों का उच्चारण करने से ही, नारायण के नाम के उच्चारण करने से ही क्या हुआ, उनके सारे पाप कट गए। और उसके बाद उन्होंने कोई नाम अपराध नहीं किया, ना पाप किया, ना कोई अपराध किया, नाम अपराध किया, और विशुद्ध होतों की कृपा से उनको भजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे वो शुद्ध नाम ले पाए, जिससे उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया और वो वैकुंठ धाम में चले। 12 साल के भीतर 88 साल की उम्र में एक घटना हुई और 12 साल की उम्र में उनको पूर्णता प्राप्त हुई। 12 साल में उन्होंने परफेक्शन अटेन कर लिया, इतने साल पाप करने के बावजूद भी। बड़े आश्चर्य की बात है कि नहीं। लेकिन ये इस प्रसंग के द्वारा पता चलता है, ये नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है। यहाँ पे नाम की महिमा बताई जाती है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं। लेकिन अजामिल की कथा है इसलिए है ताकि हम नाम की महिमा को अच्छी तरह समझ पाए। तो यहाँ पर ये बात यहाँ बताई गई है, जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है, उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट जाती है। तो शुद्ध भक्तों के संग से क्या होता है, अनुरक्ति होती है, और शुद्ध भक्तों के प्रति जब अपराध करते हैं तो क्या हो जाता है, घट जाती है। जैसे हाथी स्नान, स्नान कर लिया फिर मिट्टी डाल लिया, शुद्ध भक्तों की कृपा मिली फिर से उसके बाद अपराध कर लिया। इसे बहुत सहनशील रहना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को सही सेवा में लगाए रखना पड़ेगा, अनुकूल भाव से, नहीं तो अपराध के बड़े ही संभावना रहती है। और अपराध कली काल में हमारा मन हमेशा विचलित है, मन हमारा हमेशा परेशान है, और संभावना रहती है कि हम लोग किसी ना किसी के प्रति अपराध कर बैठते हैं, मन से, वाणी से। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमने किया वो सब व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि वैश्य समाज में अगर कोई खतरा है तो ये खतरा है बस, वैश्य अपराध। श्री रूप गोस्वामी के जीवन में देखिए, वो अपने आचरण से दिखाए क्या बताया उन्होंने। श्री रूप गोस्वामी को लीला स्फूर्ति हो रही थी, है ना, वो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे और लीला स्फूर्ति हो रही थी उनको। क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि श्रीमती राधारानी फूल चयन करना के प्रयास कर रही हैं और डाली को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, उसमें से फूल निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो कृष्ण पीछे से चढ़ गए और उन्होंने डाली नीचे की, राधारानी ने उसको पकड़ लिया, फिर उन्होंने डाली छोड़ दी तो राधारानी लटकने लगी। तो ये लीला दर्शन करके श्री रूप गोस्वामी को हंसी सी आ गई, मुस्कुराने लगे। तो सामने से एक वैष्णव आ रहे थे, अष्टवक्र का इतना थे वो, बेचारे टेढ़े मेढ़े चलते थे, तो उनको देखकर कोई भी हंस देता, तो इस प्रकार कुरूप शरीर था उनका। तो इसलिए क्या हुआ, श्री रूप गोस्वामी क्योंकि हंस दिए, वो वैष्णव बड़ा दुखी हो गया, बोलते मुझे देखकर ये हंस रहे। इस प्रकार उनके मन को ठेस पहुंची बहुत, उसी समय लीला स्फूर्ति बंद हो गई। तो रूप गोस्वामी जो है दिखा रहे हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ये प्रसंग के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब मुझे लीला स्फूर्ति नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने किसके प्रति अपराध किया है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, हम सभी वैष्णवों को एकत्रित करते हैं प्रसाद के लिए, जो नहीं आएगा वही शायद दुखी होगा आपसे। तो वही दुखी थे फिर। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में क्या बोलते, ना प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्य। मतलब किसी के शरीर को देखकर, वैष्णवों के शरीर को प्राकृत नहीं मानना चाहिए, जड़ नहीं मानना चाहिए, भौतिक नहीं मानना चाहिए, अप्राकृत होता है वैष्णव का शरीर, उसमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए, तो इस प्रकार अपराध लग जाता है। तो यही हम यहां बता रहे हैं, कोई उस स्तर पर भी अगर कोई होता है, भाव भक्ति के स्तर पर भी हो जाता है, पहुंच जाता है, वहां पर अपराध की वैसे कोई संभावना नहीं होती है। वास्तव में तो अपराध की जो अंतिम सीढ़ी है, अपराध जो है, अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, जिसको अपराध उत्थ अनर्थ कहते हैं, श्री विश्वनाथ जी ठाकुर माधुर्य कादंबनी में वो बता रहे हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर ये अपराध उत्थ अनर्थ जो है समाप्त हो जाते हैं। तो साधारणतया होता नहीं है कि भाव भक्ति के स्तर पर कोई अपराध करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वहां पे वो शीतल पड़ जाती है, ठंडा पड़ जाता है फिर। और भास हो रहा है केवल किसी को, हाँ, वो आभास भी नहीं होगा फिर। इसलिए हम देखते हैं कि वृंदावन जाते हैं, संकीर्तन में भक्त लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ भक्तों का उसमें रुचि नहीं है, आकर्षण ही नहीं है, खंभे खड़े हैं उनके साथ वो भी खड़े हैं। क्योंकि नीरस हो गया उनका हृदय अपराधों के कारण, इसे संकीर्तन सामने चल रहा है फिर भी संकीर्तन में भाग नहीं ले रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं, धाम जाने के बाद आनंद नहीं आ रहा पहला जैसे, ऐसा लगता है कि दिल्ली में ही हम कहीं घूम रहे हैं, है ना, वही बिल्डिंग देख रहे हैं, वही रेस्टोरेंट देख रहे हैं, वही लोही बाजार, कोई आकर्षण नहीं है, ऐसा लगता नहीं किसी वर्षों के बाद बैठकर कृष्ण कथा सुने, लीला का श्रवण करें, लीलाओं का कोई आकर्षण नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि अपराध होने लग गए हैं, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। प्रारंभ में जब गए थे तो सबको आभास हुआ होगा, हुआ था तो सब लोग बड़े आनंद में थे, पहली बार जब वृंदावन गए थे, है ना, यमुना जी में स्नान किया, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के दर्शन किए, कीर्तन सुना इंद्रप्रभु का, बड़ा आनंद आया सबको, है ना, और फिर लोही बाजार में जाके लस्सी पी ली हमने, टिक्की भी खाई, लेकिन उसके बाद अब वो आनंद नहीं आ रहा, इसलिए हमारा वृंदावन जाना ही बंद हो गया, है ना। राधारानी ने कहा कि दिल्ली में रहकर ही भक्ति करो, अभी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृंदावन धाम में जो अपराध करते हैं वो वृंदावन में रह ही नहीं सकते ज्यादा समय तक, और अगर रह भी रहे हैं तो केवल महामाया वृंदावन में रह रहे हैं, वो योग माया वृंदावन में नहीं रह रहे, लग रहा उनको वृंदावन में है, नहीं वृंदावन में वो, तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विषया छड़िए शुद्ध, हाँ कब शुद्ध हो वे मन, कब हम अभूत हो से श्री वृंदावन। तो जब तक हमारा मन विषय विकारों से दूर नहीं होगा हम वृंदावन धाम में कैसे प्रवेश कर पाएंगे, अपराधों से जब तक नहीं बचेंगे हम लोग, तो इसलिए दिल्ली में रहकर वृंदावन का स्मरण करेंगे वो ज्यादा जो हमारे लिए सेफ। हाँ वो अपराध ही करता रहेगा, सही कह रहे हैं आप, इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहकर अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध की भावना से हमें दूर होना है और गंभीर भक्तों का संग करना है, हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो हमेशा तत्पर रहते हैं वैष्णव की सेवा में, गुरु की सेवा में, अपराध रहित रहते हैं, तब हमारे अंदर ये भी भावना आएगी कि हमें भी अपराध रहित रहना है। तो ये बात प्रभुपाल ने यहाँ पर जोर दिया है इस बात पे, कई बार यहाँ बता रहे हैं शिला प्रभुपाल एक जगह बहुत अच्छी बात बताई है कि कोई अगर वैदिक भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है और दिखाई पड़ रहा है कि भाव भक्ति के सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसको मिथ्याचारी नहीं समझना चाहिए, उसको ढोंगी नहीं समझना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी में भाव भक्ति के नौ लक्षण हैं लेकिन हो सकता है कि आपने उनको वैधि भक्ति के कड़े नियम पालन करते हुए नहीं देखा होगा। तो यहां क्या बता रहे हैं, या ये बता रहे हैं, इसका अर्थ ये है, इसका ये अर्थ है कि पिछले जन्म में उन्होंने काफी भक्ति कर ली है, पिछले जन्म में वो आसक्ति के स्तर पर पहुंच गए, इसी कारण से जन्म में वो क्या हृदय में भाव जागृत हो गए। जैसे हमारे थे इस्कॉन में जयनंद प्रभु, तो जयनंद प्रभु हालांकि सभी विधि विधानों का पालन करते थे बड़े कड़की से, लेकिन बहुत ही अल्प काल में कह सकते हैं कि वो वास्तव में भाव की दशा में थे, है ना, निरंतर सेवा में लगे रहते थे। और प्रभुपाद उनसे इतने खुश थे, इतने खुश थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने उनको प्रभुपाद हमेशा धन्यवाद देते थे कि उन्होंने ये जयनंद प्रभु सबसे पहले उन्होंने मुझे $5,000 दिया भगवद गीता का प्रकाशन के लिए। रोज टैक्सी चलाते थे, ओहायो यूनिवर्सिटी से उन्होंने बी किया हुआ था, इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त किया हुआ था, लेकिन वो हमेशा साधारण जीवन बिताना चाह रहे थे, भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और प्रतिदिन टैक्सी चलाते थे और मंदिर भी चलाते थे, जो कमाते थे वो सारा मंदिर में देते थे, मंदिर के अध्यक्ष भी थे और साथ में टैक्सी भी चलाते थे, और मंदिर में जो भक्त थे ब्रह्मचारी लोग वो लोग संकीर्तन में प्रत्येक दिन जाते थे ताकि उनको पैसे की चिंता ना हो। इस तरह से प्रचार होता था उस समय। और प्रभुपाद जयनंद प्रभु से बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। जब भी प्रभुपाद आते थे पूछते थे वेर इज जयनंद, तो उनके अंदर इतना प्रेम था प्रभुपाद के लिए कि प्रभुपाद जब उनको ब्लड कैंसर हुआ था लुकुमिया, तो उनके घर से $5 भेजे थे उनके इलाज के लिए, पता नहीं कितने डॉलर थे, इलाज के लिए भेजा था। तो उन्होंने क्या किया, सारा पैसा प्रभुपाद को दे दिया। उन्होंने कहा मैं तो वैसे भी शरीर छोड़ने वाला हूँ, पैसा लेके क्या करूंगा। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं अपना इलाज कराओ। तो प्रभुपाद ने उनके लिए कहा, प्रभुपाद के समय में कुछ और ही भक्त शरीर छोड़ा था प्रभुपाद के टाइम में, लेकिन प्रभुपाद ने उनके लिए नहीं कहा कुछ, लेकिन जयनंद प्रभु के लिए प्रभुपाद ने लिखा है कि ये धाम गए, कृष्णलोक गए। तो ये कैसे संभव हुआ एक ही जीवन में। प्रभुपाद ने लिखा अगर इनको कोई भौतिक इच्छा रही होगी, प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी उनको, उनके जाने के बाद प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद ने लिखा कि अगर आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा रह गई होगी तो आपको उच्च लोक की प्राप्ति हुई होगी, स्वर्ग लोक गए होंगे, आप ऊंचे लोकों में गए होंगे, और नहीं होगा तो आपको भगवान की सेवा प्राप्त हो गई होगी कृष्ण लोक में, लेकिन आपके इस प्रबल इच्छा को देखकर, आपके निरंतर सेवा भावना को देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आप कृष्ण के पास ही गए हैं। ये प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद की चिट्ठी है, आप पढ़ सकते हैं शिक्षा में जो आपका इधर है लाइब्रेरी में, उसमें लिखा है, उसमें है जयनंद प्रभु के, उसमें देखिए आप। तो प्रभुपाद ऐसे नहीं लिखते। फिर प्रभुपाद ने ये भी बताया कि वैश्य कैलेंडर में, इस्कॉन के वैश्य कैलेंडर में उनका नाम आना चाहिए, वो आचार्य थे, उनका आविर्भाव दिवस हमें मनाना चाहिए, तिरुभाव दिवस हमें मनाना चाहिए, तिरुभाव दिवस मनाना चाहिए, इसलिए आज भी तिरुभाव दिवस उनका मनाया जाता है। और यहां तक प्रभुपाद ने कहा कि रथ के सामने उनका चित्र लगाना चाहिए, फोटो। तो आज भी कई इस्कॉन के सेंटर्स हैं जहां पर, मुंबई में भी रथ यात्रा जब होती है आज भी वहां जयनंद प्रभु का फोटो लगाते हैं रथ के ऊपर, अमेरिका में तो अभी भी लगाते। तो इस प्रकार के शिष्य हुए हैं, और कुछ ही समय के लिए थे, 1967 या 66 में आए थे जयंत प्रो, नहीं नहीं स्कॉन में 67 में आए थे, और 76-77 से पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा, 77 से पहले, प्रभुपाद के जाने से पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो कोई कोई 10 साल में भावभक्ति में आ जाता क्या? तो इससे समय से हम लोग भक्ति को नहीं नाप सकते, कहने का मतलब ये हमारा। तो इसका मतलब क्या है, उनके पिछले जन्म की उनकी भक्ति उनके पास साथ थी, और सबसे बड़ी बात शुद्ध भक्ति कृपा, जो हम बता रहे थे बार बार यहां पर जोर दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी, कि प्रभुपाद ने कई जगह बताया कि कोनो भाग्यवान जीव, जब किसी ने कहा कि हम भाग्यवान है प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने कहा मैंने तुम्हें भाग्यवान बनाया है। तो कोई अगर भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच पाया तो प्रभुपाद की कृपा से। इसी तरह से कई वैष्णव हमारे हुए, श्री गौर गोविंद महाराज हुए, तो ये सब क्या थे, एक तरह से फाइनल स्टेज में थे परफेक्शन के, प्रभुपाद की कृपा से उनको पूर्णता की अवस्था को प्राप्त की। तो ये शुद्ध भक्त की सेवा करने का लाभ मिलता है, इसे बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए ऐसे भक्तों में अगर कोई हम दोष भी देखते हैं जो भाव भक्ति स्तर पर है, तो उसको हमें ध्यान ही देना चाहिए। जिस तरह से चंद्रमा में काले धब्बे होते हैं, पूर्णिमा का चांद हम देखते हैं, तो पूर्णिमा का चांद जब देखते हैं तो चांद की सुंदरता को लोग निहारते हैं, उसे काले धब्बे नहीं देखते हम, ये ब्लैक स्पॉट्स कहां से आ गए चांद नहीं। इसी तरह से शुद्ध भक्तों में अगर कुछ दोष नजर भी आता है, उसको हमें ध्यान ही देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। क्योंकि इतनी जो भक्ति कर रहे हैं, निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, उसके सामने छोटी मोटी जो कमियां हैं उसका कोई महत्व तो नहीं। जैसे गंगा जी में हम देखते हैं बारिश के मौसम में झाग देखते हैं, फेन झाग देखते हैं, या फिर कुछ गंदगी देखते हैं यमुना जी में भी। लेकिन गंगा जी की पवित्रता की कमी कभी नहीं होती है, यमुना जी की पवित्रता बनी रहती है, गंगा जी की पवित्रता बनी रहती है। इसी तरह से शुद्ध भक्तों की पवित्रता यथारूप वैसे ही बनी रहती है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा इन्होंने अनुभव बताया अपना। जैसे हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु मैं आपकी अंत लीला नहीं देख सकता, ना देखना चाहता हूँ, और इसी कारण से मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ आप, आपका दर्शन करते हुए। इसी तरह से जयानंद प्रभु ने शरीर त्यागा प्रभुपाद के जाने से पहले, क्योंकि प्रभुपाद 77 में शरीर छोड़े, उससे पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई गुरु के रहते हुए प्रेम जागृत कर लेता है और पहले शरीर छोड़ देता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्तो कृष्ण प्रभु अभी हाल ही में, ये तो तब की बात है, अभी भी ऐसा हो रहा है। कुशकर्ता प्रभु वृंदावन में, इस प्रकार कई जो वैष्णव हुए हैं, हमारे श्रीधर महाराज को हमने देखा, तमाल कृष्ण महाराज को देखा, गोरगंध महाराज को देखा, और ऐसे कई वैष्णव है जिनको शायद वैष्णव समाज में प्रचलित नहीं होंगे, है ना, लेकिन उनके हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज भी ये जो भक्ति रसाम सिंधु में जो दिया गया दिव्य ज्ञान है, शिलरूप गोस्वामी के द्वारा जो बताया गया है, शिक्षा दी गई है, वो आज भी हम लोग उसको लागू कर सकते हैं। आगे क्या बता रहे हैं देखिए, आज 19वां अध्याय हम लोग आगे ले रहे हैं। 19वां अध्याय का नाम है प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति। इसमें और भी थोड़ा बताया गया है, इससे पहले कि हम प्रेम भक्ति में जाएं, कि और सबसे बड़ा अपराध क्या होता है। इस प्रकार का जो आभास होता है तो जिनके अंदर निर्विशेष वाद भरा होता है, वो क्या करते हैं, उनके हृदय में इस प्रकार की भावनाएं भी आ जाती हैं। इसको अंग रूपासना कहते हैं। अंग रूपासना का मतलब यह है कि वो संकीर्तन करते करते ये सोचने लगते हैं कि हम खुद भी अब भगवान हो गए। तो मायावादी भी संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं मायावादी, लेकिन वो आभास नहीं है, वो नामाभास भी नहीं, वो शत प्रतिशत नामापराध। भक्तिवर ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि बताया है कि वो नाम संकीर्तन में नहीं जाना चाहिए, हमें अपराध लगता है, क्योंकि जिस भावना से विचार से वो हरिनाम ले रहे हैं उसमें निर्विशेष वाद का दर्शन है, जो कि अपराध जनक होता है। तो इस प्रकार कोई प्राकृत व्यक्ति होता है, प्राकृत अवस्था में होता है, इस प्रकार के दुर्विचार आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा होता है। प्रेम भक्ति 19वां अध्याय, जल्दी जो हमारे जो BHE में है, जहाँ पर भक्ति शास्त्री का कोर्स होता है, नेक्टर डिवोशन का, तो यहाँ तक लेते हैं, 19 चैप्टर तक ही लिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस बार आगे बढ़ेंगे जन्माष्टमी के बाद, क्योंकि इसमें खास का जो अध्याय है जो हमने पहले कभी लिया नहीं, भगवान कृष्ण के गुण, 64 गुण, क्वालिटीज ऑफ श्री कृष्ण, तो अच्छा है भगवान के गुण सुनना, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा ही है। भगवान के जितने गुण हम सुनेंगे, गुणों से आकर्षित होंगे, भगवान के गुणों से आकर्षित होंगे तो रूप से भी आकर्षण होगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग बता रहे हैं प्रेम भक्ति के बारे में। प्रेम भक्ति के बारे में श्रील रूप गोस्वामी क्या कह रहे थे, हाँ सुनेंगे। तो भाव से हृदय बड़ा कोमल हो जाता है, लेकिन प्रेम के कारण हृदय बिल्कुल कोमल हो जाता है। प्रेम जो है वास्तव में भाव में क्या होता है, भाव में प्रेम अंकुरित होता है। भाव में क्या होता है, प्रेम अंकुरित होता है। जैसे आप सूरज की किरणें देखते हैं आकाश में प्रातः काल में, सूर्य उदय हो रहा है, चारों तरफ एक लालिमा सजा नजर आती है आकाश में, तो उसको कहते हैं भाव। और जब पूरा सूर्य दिखाई पड़ता है उसको कहते हैं प्रेम। अब समझ रहे बात। तो इस प्रकार सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य को देखते हैं और सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, तो सूर्य को जब देखते हैं तो वास्तव में आपको पता चलता है कि प्रेम कितना प्रबल होता है। सांदर आनंद विशेष आत्मा, सांदर आनंद विशेष आत्मा, ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। आपको याद है दो लक्षण बताए थे हमने, उसमें से एक लक्षण ये है। सांदर आनंद विशेष आत्मा का मतलब है कंटेंस ब्लिस, इंटेंसिटी बढ़ जाती है श्रद्धा से लेकर प्रेम तक। श्रद्धा क्या है? शुरुआत है। वही श्रद्धा जब परिपूर्ण हो जाती है, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, उसको प्रेम कहते हैं। यानी कि आपको सूरज का दर्शन होने लगा, सूर्य, आप सूर्य लोक में प्रवेश कर गए। दर्शन क्या? आप सूर्य लोक में आप प्रवेश कर गए, नित्य लीला प्रविष्ट बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। भाव की दशा में ऐसे ब्रह्मा जी का अगर सुने हम ब्रह्म संहिता में, यहां बताया है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, उसकी टीका में बताया है कि जब ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी गोपाल मंत्र या काम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, तो जब ध्यान लगा रहे थे, वो कितने समय का ध्यान लगाया? देवताओं के 100 वर्ष, इतने समय तक उन्होंने ध्यान लगाया सृष्टि के प्रारंभ में। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि उनको आभास हुआ ब्रह्मा जी को, यानी कि ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाए, लेकिन उनको एक आभास सा हुआ कि वास्तव में क्या है, गोलोक धाम में वो दासी हैं। ब्रह्मा जी ने उनको पता चला इस तरह से कि वो क्या है, मेड सर्वेंट है, लेकिन डिटेल्स में नहीं जा पाए। आसक्ति के स्तर पर ऐसा होता है। और भाव की दशा में हम स्वरूप को जान पाते हैं और उस स्वरूप में सेवा करते हैं भाव की दशा में। तो ये मतलब क्या कहते हैं, एक तरह का तो भाव ये जब इंटेंस हो जाता है और तब वास्तव में कोई लीला में प्रवेश करता है। तो इस जीवन में तो कोई भाव की दशा तक पहुंच सकता है, लेकिन उससे अगर आगे बढ़ना है तो फिर लीला में प्रवेश करना पड़ेगा। तो यहां पर ये बताया है, इस श्लोक यहां पर जो श्लोक दिया है श्री गोस्वामी ने प्रेम की परिभाषा देते हुए बताया है, सम्यन मष्टिता स्वांतो ममत्वा अतिशयांकितः भावा स एव सांदरात्मा बुद्धे प्रेमा निगत्यते। हृदय बिल्कुल कोमल हो जाता है, भाव से क्या होता है, हृदय बिल्कुल कोमल हो जाता है और ममत्व की भावना जागृत हो जाती है, ममत्व की भावना जागृत हो जाती है और इस प्रकार प्रेम बड़ा प्रबल हो जाता है। जैसे पहले उदाहरण दिया था कि जो लोहा होता है या धातु होता है, उसमें से आप सुई की नोक निकालो, सुई निकालोगे तो सुई जाएगा उसमें से। लोहे का अगर आपके पास कुछ भी हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, मेटल, उसमें आप अपना पिन निकालना चाह रहे हो, उसमें वो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इसी तरह से जब प्रेम भक्ति को एक स्तर पर होता है तो प्रेम इतना कंडेंस्ड होता है कि भौतिक इच्छाओं का आभास तक नहीं होता, रंच मात्र, भौतिक इच्छाओं का रंच मात्र तक आभास नहीं होता है। वो उसको सोच भी नहीं सकता कि भौतिक इच्छाएं क्या होती हैं, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हो ममत्व के कारण, कृष्ण से ममत्व के कारण वो और कुछ सोच ही नहीं सकता है। इसलिए इंद्र तृप्ति का रंच मात्र भी आभास तक नहीं होता उसको। तो यहां पर श्रील रूप गोस्वामी प्रेम भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं और नारद पंचरात्र से उदाहरण दे रहे हैं। ये जो काम है जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं और अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं श्री कृष्ण से, तो इसको प्रेम कहते हैं। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज, उद्धव और नारद जी, तो ये सब प्रेमी भक्त हैं। भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज, नारद जी दास्य रस में, प्रहलाद महाराज शांत रस में, इस प्रकार नाना प्रकार के रस का आदान प्रदान होता है भगवान के साथ। भाव भक्ति के साथ कई और अन्य भाव का संसर्ग होता है, खासकर संचारी भाव का। आगे चलकर हम पढ़ेंगे 33 प्रकार के संचारी भाव हैं, श्री रूप गोस्वामी ने बताया है। बहुत ही विचित्र बात है कि शिल रूप गोस्वामी के आने से पहले या महाप्रभु के आने से पहले किसी अन्य आचार्य ने प्रेम के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी किसी ने नहीं दी। प्रेम के बारे में बताया जरूर, भगवत प्रेम हमें प्राप्त करना है, लेकिन उसके बारे में इतना विस्तार से वर्णन किसी ने नहीं किया जितना श्री रूप गोस्वामी ने दिया है, जो कि महापुरुष उनको प्राप्त हुआ। इसलिए रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी का जो देन है, उनकी जो व्याख्या है भक्ति रसाम सिंधु में या अन्य ग्रंथ जैसे उज्जवल नीलमणि, उसमें जो व्याख्या दी उन्होंने प्रेम की, वो कहीं भी नहीं पाई जाती। इसलिए उनका योगदान इस संसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और चैतन्य महापुरुष चाहते थे, चैतन्य महापुरुष चाहते थे कि लोग जाने कि प्रेम से आगे भी कुछ होता है, तो ये शिल रूप गोस्वामी ने बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, बड़े बड़े जो महाजन है, भीष्म पितामह, उन्होंने क्या बताया प्रेम के बारे में, यानी कि प्रेम का मतलब है कि कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के लिए प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ ये, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के लिए स्नेह नहीं है, किसी के लिए आकर्षण नहीं है, किसी के लिए ममत्व की भावना नहीं है, केवल कृष्ण के लिए। और कृष्ण भी यही चाहते हैं, जिस तरह से आपके भक्त के हृदय में, प्रेमी भक्त के हृदय में ममत्व की भावना रहती है, उसी प्रकार कृष्ण भी बड़े ही कृष्ण के हृदय में भी ममत्व की भावना रहती है। पोसेसिवनेस इसको कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, कह रहे ना भगवान गीता में, जिस तरह से ब्रजवासी जो है वो मेरे शरण में आते हैं, उनके हृदय में ममत्व की भावना है, उसी प्रकार से आप भी मेरी शरण में आओ। जो ममत्व की भावना उन्होंने जागृत किया है, जागृत किया उनके पास है, स्वाभाविक है उनके पास, उसी तरह से हमें शरणागत होना है, भगवान कह रहे हैं, तब हम ब्रज में प्रवेश कर सकते। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम, एकम शब्द का मतलब क्या है, केवल मेरे पास। कृष्ण नहीं चाहते हैं कि उनके और भक्त के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आए, यह है वास्तव में प्रेम का लक्षण। और सांसारिक दुनिया में, इस भौतिक जगत में भी इस प्रकार कई बार देखा जाता है, जैसे आजकल के चलचित्रों में, मूवीज में दिखाते हैं, वो क्या है, काम है। इस संसार में प्रेम नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एक आडंबर है और भ्रम है। इसलिए कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कि अपने इंद्रियों के लिए हम लोग इच्छा करते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जब करते हैं उसको काम कहते हैं, उसकी तुलना लोहे से की गई है। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, इच्छा करते हैं कि हम लोग कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करेंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो उसको प्रेम कहा गया है, वो है प्रेम नाम, प्रेम नाम। तो इस जगत में केवल काम है, सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कंडीशनड है, सब में कंडीशनिंग है। यानी कि हमने कुछ दिया तो आपने क्या दिया, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने क्या किया, हमने इतना कुछ किया, तुमने क्या किया, आपस में बस यही लेन देन चल रहा, बस व्यापार। प्रहलाद महाराज से जब पूछा भगवान नरसिंह देव ने, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वरदान दूंगा, उन्हें कहा मैं व्यापारी हूं क्या, मैं बिजनेस मैन नहीं हूं, बिजनेस तो लोग देवताओं के साथ कर रहे हैं, है ना। तो वहां बिजनेस चल रहा है, और मंदिरों में लोग मांगने आ रहे हैं भिखारियों की तरह, भीख मांग रहे हैं लोग, और मंदिरों में जाके लोग भीख मांगते हैं, और देवी देवता खुश हो जाते हैं, वो भी दे देते हैं। लेकिन कृष्ण के पास कोई जाता है तो वहां पर ये व्यापार नहीं चलता है, वहां पर तो आदान प्रदान चलता है प्रेम का। और कृष्ण के पास जाने पर हम लोग समझ पाते हैं कि कृष्ण चाहते हैं केवल, क्या चाहते हैं, केवल हम कृष्ण को चाहें और किसी को नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, यह है उत्तमा भक्ति। वास्तव में ये जो बात चर्चा की श्री रूप गोस्वामी ने, इसे ये भी पता चलता है कि वास्तव में ये तो ब्रजवासियों के लिए लागू होता है, उनके पास हृदय में प्रेम है। गिरिराज को धारण किया श्री कृष्ण ने, केवल प्रेम, देखिए केवल भक्ति, केवल भक्ति ब्रजवासियों में नजर आ रही है। गिरिराज को धारण किए हुए 7 दिन 7 रात, उनके ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, कि देखो इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया, जय हो है कन्हैया की जय हो, हमारे ठाकुर जी की जय हो, देखो इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया, नहीं, वो तो उनके सौंदर्य से आकर्षित हो रहे हैं, सखा हो या उनके नंद महाराज हो, माता यशोदा हो या गोपियां हैं, गोप सखा हैं या और भी जो पशु हैं, गाय बछड़े सब, ये सब तो कृष्ण के सौंदर्य को देकर आकर्षित हो रहे हैं, है ना, उनके रूप माधुर्य को देकर आकर्षित हो रहे हैं। अब हमें मौका मिला है कि हम लोग लगातार ताकते रहेंगे कृष्ण को, सात दिन सात रात हमें मौका मिला है, ऐसा मौका हमें मिले, लेकिन उसके लिए फिर उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लिया कृष्ण, तो ये लीला है भगवान की। तो इस प्रकार अपने प्रेमी भक्तों को कृष्ण प्रकार मौका देते हैं। और यहां पे लिखा है, भाव भक्ति में कोई अपना संबंध जान पाता है, भगवान का दर्शन करता है, लेकिन प्रेम भक्ति में वास्तव में कोई कृष्ण की लीला में प्रवेश करता है अपने स्वरूप में, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने पर। और लीला में जो प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं वास्तु सिद्धि। बृहद भागवतामृत में लिखा है कि सबसे पहले तो हम भव वृंदावन में जहां पर लीला हो रही है, भगवान की प्राकट्य लीला हो रही है, उन लीलाओं में प्रवेश करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। जिस तरह से दंडकारण्य के ऋषियों को प्राप्त हुआ अवसर द्वापर युग में रासलीला में भाग लेने का, और भी कई प्रकार अन्य गोपियां वहां पर आए थे, तो उनको लीलाओं में प्रवेश मिला। हाँ, हम लोग भी प्रवेश करते हैं, लेकिन नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, है ना, हम उनके शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं करते हैं, भक्त भी प्रवेश करते हैं, लेकिन नित्य लीला प्रवेश, तो इस प्रकार प्रवेश प्राप्त होता है। और ममत्व की भावना की इजाजत होती है कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे प्रेमी हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, ये नहीं कि मैं कृष्ण का हूं या कृष्ण मेरे, दोनों में अंतर है कि नहीं, तो ममत्व की भावना ज्यादा है। तो इसमें यह बात बताइए कृष्ण मेरे हैं, तो यह बात ममत्व की भावना दिखाई पड़ती है। तो दो तरीका है इसको प्रेम को प्राप्त करने का बता रहे हैं, कि भाव जब परिपक्व हो जाता है तब प्रेम प्राप्त होता है, और दूसरा बता रहे हैं भगवान की अयुत की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा, ये तो हमेशा चाहिए, नित्य परिकरों की कृपा, रागात्मिका भक्तों की कृपा, ब्रज में प्रवेश करना है तो रागात्मिका भक्तों की कृपा, और उस मार्ग में जो वैष्णव है उनकी कृपा, तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नये अखिलम इति उपदेश सारम, है ना, उपदेश का सार क्या है, श्री रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि वृंदावन में वास करके अनुरागी जो है वहां पर उनके अनुगत्य होकर 24 घंटे श्रवण कीर्तन करें, निरंतर लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें। तिष्ठन ब्रजे तो ठीक है, वहां तक तो समझ में आ जाता है कि ब्रज में रहना है, लेकिन उसके बाद जो श्रवण कीर्तन करना है 24 घंटे वो नहीं हो पाता, ये समस्या है। इसलिए तिष्ठन दिल्ली और यहां रहकर जितना कर रहे हैं श्रवण कीर्तन वो अच्छा है, लेकिन वहां कुछ देर श्रवण कीर्तन करेंगे, कुछ देर घूमेंगे फिरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वहां वृंदावन में अगर वास करना है तो वहां पर क्या है, निरंतर श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा, अभी कोई बता रहा था, आज शाम को बता रहा था, कौन बता रहा था, ऊर्ज व्रत के बारे में पूछ रहे थे प्रभुपाद से। ऊर्ज व्रत कार्तिक मास में रखते हैं, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी के लिए ऊर्ज व्रत के बारे में पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ आप रख सकते हो ऊर्ज व्रत, तो इसमें क्या करना होता है कि दिन रात हरिनाम लेना होता है, खाना सोना बंद, इसको कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं ऊर्ज व्रत। तो वो घबरा गया, तो प्रभुपाद ने कहा इसलिए अच्छा है कि जो कर रहे हैं वही बहुत है। तो यहां पर प्रेम के भी अगर दो विभाग किए जाएं जो भाव से जागृत होते हैं, जैसे कि हमने पहले दिखा आपके पास चार्ट है, हमने एक चार्ट दिया था आपको, कहाँ है वो चार्ट, अगर चार्ट है उसको देखिए, ये प्रेम के बारे में बताया है इन्होंने, श्री रूप गोस्वामी ने पहले बताया था, सांदरानंद विशेष आत्मा ब्रह्मानंदो भवेत एष चेत प्रार्थ गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलाम अपि। यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र के तुल्य नहीं हो सकता। इतना आनंद प्राप्त होता है ना, फिर दोबारा कौन संसार को देखेगा। इसको कहते हैं विरक्ति। भाव भक्ति के जो नौ लक्षण बताए थे याद है आपको, उसमें विरक्ति आता है। और विरक्ति का वास्तव में जो अर्थ है वहां जो दिया गया है उसका अर्थ यह है, विरक्ति का मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। कृष्ण के बारे में ही सुनना चाह रहे हैं, कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण का निरंतर चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण की निरंतर सेवा कर रहे हैं, कृष्ण के नामों का निरंतर उच्चारण कर रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसको विरक्ति कहते हैं। यह है विरक्ति। इस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा अगर धाम में जाना है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं अगर अंत काल में अगर चॉकलेट खाने की भी इच्छा हो गई तो वापस आना पड़ेगा चॉकलेट खाने। शून्यम का मतलब यह है जीरो। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं श्री गोस्वामी। तो वैधि भाव उत्प्रेम, वैधि भाव उत्प्रेम का मतलब यह है कि वैधि भक्ति के द्वारा जो भाव जागृत होता है तो उससे वैकुंठ के धाम में प्रवेश करते हैं, और राग मार्ग के द्वारा जो भाव जागृत होता है ब्रज में प्रवेश करते हैं। आपके इस चार्ट पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है वैधि भक्ति और राग भक्ति के बारे में दिखाया। देखिए वैधि भक्ति में दिखाया वही स्टेप्स हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। अब रुचि के स्तर पर पहुंचे अगर कोई वैधि भक्ति में तो लोभ जागृत हुआ, जैसे हमने बताया पहले वैकुंठ के पार्षदों के प्रति लोभ जागृत हुआ, नारद जी और पार्षद नंद सुनंद इनके प्रति आपका प्रेम जागृत हुआ, या इनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, इनकी सेवा करना चाह रहे हैं, इनकी तरह सेवा करना चाह रहे हैं, है ना, वैकुंठ के पार्षदों के प्रति आकर्षण जागृत हो गया, आपका लोभ जागृत हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, आसक्ति और भाव वैकुंठ के लिए जागृत होगा और प्रेम भी वैकुंठ के लिए जागृत होगा। और वैकुंठ में दो रस पाए जाते हैं, एक तो शांत रस और दास रस, वहां केवल दो रस हैं केवल वैकुंठ धाम। और रागानुगम मार्ग में कोई अगर पढ़ता है लोभ की अवस्था में ब्रज के परिकरों से आकर्षण होता है, अगर ब्रज के नित्य परिकरों से आकर्षण होता है, सुबल सखा, श्रीदाम, मधुमंगल और इस तरह से गोपियां, ब्रज की गोपियां और मंजरियां, इन नित्य परिकरों से हमारा आकर्षण होता है और उनकी तरह हम सेवा करना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रहकर लालसा जागृत होती है, लोभ जागृत होता है, तो ऐसी लालसा ऐसा लोभ आपको ब्रज में प्रवेश करवाएगा। जब हम किसी रागात्मिक भक्त के अनुचर अनुगत्य होकर हम लोग भक्ति करें, तो इसलिए यहां पर डिवीजन दिखाए गए। तो वैधि भक्ति के द्वारा जो भाव जागृत होता है वह वैकुंठ ले जाता है, और रागानु भक्ति के द्वारा, रागानु का साधना भक्ति के द्वारा जो भाव जागृत होता है वो हमें ब्रह्म में प्रवेश कराता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि प्रेम के आगे की भी सीढ़ियां बताई गई हैं। आप देख रहे हैं प्रेम के आगे सीढ़ियां, देख रहे हैं आप प्रेम के आगे भी बहुत कुछ है श्री रूप गोस्वामी ने बताया। तो जब प्रेम जब जागृत हो जाता है और नित्य लीला में प्रवेश करते हैं तो आगे के भी स्टेप्स बताए गए, तो उसका वर्णन तो हम यहां नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका वर्णन आगे चलकर आता है, भक्ति रसाम सिंधु के आगे आगे के डिवीजन में आएगा ये। और उज्जवल नीलमणि में, तो उज्जवल नीलमणि में और इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, प्रेम, उसके बाद स्नेह, उसके बाद मान, फिर प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर उसके बाद अनुराग, यानी वही भाव जब परिपक्व हो जाता है जो हमें महाभाव में ले जाता है। महाभाव केवल गोपियों में पाया जाता है, महाभाव केवल गोपियों में पाया जाता है, ब्रज की गोपियों में केवल महाभाव होता है और सखाओं में केवल सुबल सखा में कभी कभी दिखाई पड़ता है, लेकिन महाभाव वास्तव में गोपियों का ही अधिकार है महाभाव में। और वात्सल्य रस में ये अनुराग तक जाता है, सख्य रस में अनुराग तक जाता है, दास्य रस में राग तक जाता है प्रेम, और शांत रस में केवल प्रेम तक ही जाता है, यानी कि प्रेम जब जागृत होता है प्रहलाद महाराज की तरह, तो प्रहलाद महाराज का जो प्रेम है वो शांत रस में है, लेकिन प्रेम से आगे भी बहुत है। इसलिए भरत भागवत अमर जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है हमें, है ना, कि प्रहलाद महाराज से भी आगे कोई है, उनसे भी आगे कोई है रस के आधार पर। हाँ, तो इस प्रकार जो गोपियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं जहां तक प्रेम की बात है, क्योंकि हृदय में जो महाभाव है वो किसी अन्य भक्तों में नहीं पाया जाता। और महाभाव के भी आगे डिविजन होते हैं, रूढ़ महाभाव और आदि रूढ़ महाभाव, यहां पर नहीं वर्णन किया, वो उज्ज्वल नीलमणि प्राप्त होता है। रूढ़ महाभाव और आदि रूढ़ महाभाव, और आधिरूढ़ महाभाव में क्या होता है, उसमें और भी डिविजन्स, उसमें और भी डिविजन्स, ठीक है, उसमें डिविजन्स हैं मादन, नहीं मादन नहीं, मोदन, मोदन, मोहन और मादन, तो ये और आधिरूढ़ महाभाव के और डिविजन्स। तो मादन जो है, मादन भाव, मादन आख्य महाभाव, ये केवल श्रीमती राधारानी के पास और किसी के पास नहीं है, ना ललिता जी के पास है ना विशाखे जी के पास। ये जो माधन आख्य महाभाव है केवल श्रीमती राधारानी के पास है और किसी के पास नहीं है, श्री कृष्ण के पास भी नहीं है। श्री कृष्ण जो रसराज है, रसों के राजा हैं, रसों के भंडार हैं, रसो वही सहा अखिल रसामृत मूर्ति जिनको कहा शुरू में शिलोर गोस्वामी ने, उनके पास भी ये महाभाव नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य लोग श्रील जी गोस्वामी ने शायद लिखा है भागवत के प्रथम स्कंध का जो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है जिसमें अभिज्ञ बताया भगवान श्री कृष्ण को, वो कहते हैं कि वो अभिज्ञ नहीं है, इस मामले वो अनभिज्ञ है, वो श्रीमती राधारानी के इस महाभाव को नहीं जानते, इसी कारण से वो इस महाभाव की वो चोरी कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण चोर है तो वो इस माधना के महाभाव की भी चोरी करते हैं। ऐसे तो हमने सुना होगा कि आश्रय लेते हैं, लेकिन आश्रय लेना अलग होता है, चोरी करना अलग होता है। आश्रय में तो शिक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें चोरी की, चोरी कर ली तो भाव की, जब चोरी की तो कांति बदल गई, माधना के महाभाव की चोरी की तो कांति भी बदल गई, गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए, निवाय पंडित के रूप में प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी श्रीमती राधारानी के इस महाभाव को नहीं समझ पा रहे। इसको हम गौर लीला में ले चले आपको इस कारण से कि समझ सके हम लोग कि गौर लीला का जो मूल तत्व तो है वो क्या है। इसलिए गौर लीला में हम देखते हैं इस कारण से, जब निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे नवदीप में, वो ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे निमाई पंडित है? लेकिन जब उनका संपर्क किससे हुआ, गदाधर पंडित से हुआ, और फिर उसके बाद स्वरूप दामोदर से हुआ, और आगे चलकर फिर जो संन्यास लेने के बाद रामानंद राय से मिले, तो तब जाके उनका प्रशिक्षण हो रहा था, उनसे उनको प्रशिक्षण मिल रहा था। तो इस कारण से श्रीमती राधारानी ने सोचा, क्या सोचा श्रीमती राधारानी ने, जिस प्रकार की भाव की चोरी हुई तो श्रीमती राधारानी ने सोचा ये न श्री कृष्ण ने चुरा तो लिया मेरा महाभाव, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे, तो मुझे ही इसका मुझे ही प्रशिक्षण देना पड़ेगा, इसका प्रशिक्षण मुझे ही देना पड़ेगा। तो श्रीमती राधारानी जो है फिर गौर लीला में गदाधर पंडित के रूप में आते हैं इस महाभाव की शिक्षा देने के लिए। इस कारण से ये गदाधर पंडित क्या अपने आप को हमेशा खोखला समझते हैं, एक भिखारी की तरह वो महापुरुष के पीछे चले जाते हैं, परछाई की तरह घूमते रहते हैं उनके साथ साथ, जहां जहां महापुरुष जाएंगे वहां वहां पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए शची माता ने भी तो कहा, क्या बोला गदाधर पंडित को, कि निमाय के पीछे परछाई की तरह लगे रहना, क्योंकि जब जब निमाय इष्ट की पूजा करते थे विग्रह की, वो रोते रहते थे, कपड़ा गीला होता रहता था, रोते रहते थे, कपड़ा गीला होता रहता था, बोलते मेरे से नहीं होती सेवा, गदाधर आप ही सेवा करो इनकी। तो फिर जब वो उनका जो है, जब श्रीपाद ईश्वरपुरी से भी मुलाकात हो गई, गया से जब वापस आ गए, तो अपने आप को कभी भी वो नियंत्रित नहीं रख पाते थे, हमेशा भावावेश में रहते थे। तो गदाधर पंडित को बोला शची माता ने कि आप इनकी रक्षा करना, उनके चरणों के पास लेटे रहते, उनके चरण सेवा करते, उनको चंदन का लेप लगाते, माल्यार्पण करते, और उनके लिए लीलाएं, लीलाओं का श्रवण करवाते, कृष्ण कथा करते। इस तरह से गदाधर पंडित हमेशा उनके पीछे परछाई के रूप में लगे रहे। कारण क्या था इसका? कारण ये था कि गदाधर पंडित जो है उनको हमेशा ये लग रहा था ये महाभाव की चोरी तो उन्होंने कर ली है ना, तो उनके पीछे पीछे लगे रहेंगे। प्रश्न ये उठता अगर महाभाव की चोरी हो गई तो क्या शिक्षा देंगे? कोई पूछ सकता है अगर मेरे सामान चोरी हो गया तो मैं कैसे आपको कुछ दे सकता हूं? लेकिन उस सामान के बारे में जानकारी रखता हूं, चोरी कर लो आप, लेकिन मैंने जो लिखा है डायरी में वो अभी मैं जानता हूं। डायरी आपके पास है लेकिन जानता मैं हूं, आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। असर है, किताब आपके पास है लेकिन क्या है, टीचर के पास किताब नहीं है लेकिन आपके पास किताब होते हुए आप नहीं समझ रहे। तो इसी तरह से गदाधर पंडित हालांकि वो इस प्रकार महाप्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं लेकिन डायरी तो महाप्रभु के पास, महाभाव की डायरी चैतन्य महाप्रभु के पास है, लेकिन गदाधर पंडित जो है फिर भी उनको शिक्षा दे रहे, क्योंकि गदाधर पंडित जानते हैं कि उस डायरी में क्या लिखा है। इसी कारण से जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत कथा करते और महाप्रभु का इस भाव को भाव का पोषण करते। तो ये इसके पिछले तत्व है गदाधर पंडित। तो ये बहुत ही गुह्यतम बात है, बहुत ही अल्टीमेट बात, भक्ति नैपुण्य। चैतन्य महाप्रभु जो अपने इस प्रेम लीला में, प्रेमय लीला में, इसलिए प्रेम अवतार कहा जाता है, लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम, गौरव महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु जो है प्रेम की जो सीमा है, प्रेम भक्ति की जो सीमा है इसको भक्ति नैपुण्य कहते हैं। अल्टीमेट लिमिट जो है, लास्ट लिमिट क्या है भक्ति का, वो दिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने, जो किसी भी अवतार में किसी भी युग में भगवान ने प्रदर्शित नहीं किया। न मत्स्य अवतार में, न कूर्मा, न वराह, न मत्स्य, न नरसिंह अवतार, न कृष्ण लीला में भी इस महाभाव का प्रदर्शन नहीं हुआ। राधारानी ने तो किया लेकिन कृष्ण नहीं समझ पाए। तो इस तरह से ये महाभाव का प्रदर्शन, और हम जैसे जीवात्माओं को क्या देना चाह रहे हैं फिर महाप्रभु? हम जैसे जीवात्माओं को महाप्रभु राधा रानी की सेवा देना चाहते हैं, जो कि यहां पे लिखा हुआ है आपके चार्ट में, तत्त भाव इच्छा मही। आप देख रहे हैं इसके बारे में वर्णन कर चुके हैं पहले, तत्त भाव इच्छा मही। राधा रानी के माध्यम से कृष्ण की सेवा होती है और राधा रानी की सेवा करते हैं गौड़िया वैष्णव। तो इस प्रकार से क्या होता है, राधारानी में जो भी भाव प्रकट होते हैं तत्काल मंजरियों में वो प्रकट हो जाते हैं, वो सारे प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ये इस मंजरियां और से जाए कई गुना जो है उसका लाभ उठाते हैं मंजरिया। तो इस प्रकार ये कई जो प्रेम के डिविजन्स दिखाए गए हैं, और इसका तो काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है लेकिन समय कम है इसलिए इसको इस प्रकार समझ ले वही पर्याप्त है। तो यहां पर ये बताया कि गोपियां जो थीं उन्होंने वेदाध्यन नहीं किया। वृंदावन की गोपियों ने मेरे प्राप्ति के लिए ना तो वेद पढ़ा था ना ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था। वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए ना तो वेद पढ़ा था ना ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, ना ही उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किसी विद्वान को किया, ना ही उन्होंने कोई तपस्या की, उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। यदि कोई व्यक्ति, श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, उनसे प्रेम करता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया है। दूसरी ओर यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यास के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ हैं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से परे हो चुका है, किंतु यदि सब प्रकार के तपों के बाद भी वह भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता तो समझे कि उसकी सारी तपस्या बेकार है। इसलिए यहां पर बताया कि शुद्ध भक्तों की संगति बहुत जरूरी है, और ये यहां पर प्रेम के बारे में बताया जो पहले भी कई बार हम श्लोक उदित कर चुके हैं। ये श्लोक यहाँ पर इस अध्याय में पाया जाता है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्ति ततो भावा तथा प्रेमा भी उदंचति साधकानाम अयम प्रेमनः प्रादुर्भावे भवेत कर्मा। श्री रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कैसे कोई श्रद्धा से प्रेम तक जाता है। तो इस तरह ये प्रेम भक्ति के बारे में इस अध्याय बताया है। यहाँ पर एक बात और बताइए, थोड़े से पढ़ देते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब श्रील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जाता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन है। यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति उसके एक प्रकृति तेज हो जाती है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति करता है तो उसे भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं जो श्रद्धा से कोई प्रेम तक कैसे पहुंचता है, तो उसके बारे में प्रभुपाद फिर से वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। शुद्ध भक्तों की संगति की ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रकट एवं प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है और उसको अपना गुरु मान लेता है। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैधि भक्ति संबंध करता है और ऐसे कर्मों के फल स्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है, यानी कि निष्ठा पर पहुंच जाता है। उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित होती है, फिर अनुरक्ति, आसक्ति, तब भाव और अंततः शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। केवल अति भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त होती है। समहात्मा सुदुर्लभा, भगवान भी गीता में ही कह रहे हैं। जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सैद्धांतिक ज्ञाता है वे इस विकास को नहीं समझ पाते। ये नारद पंचरात में शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे महादेवी, तुम उससे ये जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वे शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। स्नेह तथा प्रेम व्यापार, प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकट्यों के पूर्व आती हैं और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। इसकी व्याख्या श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने पुस्तक भागवतामृत में की है। तुमने बताया बृहद भागवतामृत है ना। यद्यपि ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गुह्य है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने उनको खुलकर वर्णन किया है, उनका खुलकर वर्णन किया है। इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रति प्रतिष्ठापक श्री सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करते हैं। इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसाम सिंधु लिखा गया था तब महान भक्त जी गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे। इस प्रकार भक्ति रसाम सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भाव प्रेम के वर्णन तक जिसे आगे और दिया जाएगा, भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण हुआ। प्रभुपाद प्रारंभ में जब 1940 में सबसे पहले उन्होंने भगवत दर्शन पत्रिका लिखी थी तो प्रभुपाद उस समय चाह रहे थे कि भक्ति रसाम सिंधु का वो शब्दार्थ भी करें और किया भी उन्होंने अनुवाद और तात्पर्य के साथ। प्रभुपाद चाहते थे कि पूरा हो, पूरी भक्ति रसाम सिंधु प्राप्त हो, प्रभुपाद चाहते थे। लेकिन फिर प्रभुपाद ने भागवतम में श्रीमद् भागवतम अपना ध्यान लगाया और अभी तो खैर उनके शिष्य हैं, उन्होंने उसका अनुवाद कर ही दिया है। तो ये जो है इस प्रकार हम लोगों ने ईस्टर्न ओशन, ईस्टर्न डिवीजन हमने कवर किया और हम सदर्न ओशन की तरफ जाएंगे, दक्षिण विभाग की तरफ बढ़ेंगे अगली बार, शायद उस तरह जन्माष्टमी के बाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रसाद तैयार है क्योंकि वहाँ पर प्रसाद साफ ना हो जाते हैं। वैश्य अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, कोई ना कोई अपराध तो हो ही रहे, क्योंकि अपराधों से भी अनर्थ बढ़ते हैं ना। एक तो पिछले जन्म के अनर्थ हैं और दूसरा अपराधों से भी अनर्थ बढ़ते हैं, तो सबको उन सबको पार करके जाना होगा ना, लेकिन जो प्रोसेस दिया है उसको फॉलो करते रहना, तो उसी से कटेंगे प्राण। तो हरि नाम लेते रहिए, जान जाएंगे, कृष्ण बता दें, क्षमा आपको मांगनी पड़ेगी, कृष्ण नहीं मांगे। Working in the office, what happens?
Sometimes there is too much work pressure, or sometimes you're unable to sort something out, or in life sometimes good things happen and you kind of depend on Krishna for material things. Invariably, you don't know, but apparently inside your heart you kind of,
That's answered in Srimad Bhagavatam. Kama sarva kama va moksha kama udaradhi तीव्रेन भक्ति योगी ने यजेत पुरुषम परम। सो इवन इफ यू आर गॉट मटेरियल डिजायर्स और यू आर फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स और यू आर सीकिंग फॉर लिबरेशन, स्टिल यू शुड एक्चुअली वर्शिप कृष्णा विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड डिटरमिनेशन। Yeah, we have to be in the association of devotees and practice the process of sadhana bhakti. We cannot compromise with that. Like your basic rounds, chanting minimum 16 rounds, following four regulative principles, studying books, associating with devotees, having darshan of the deities. This panchang bhakti, the process of following the panchang bhakti, the five most important limbs of devotion service, we have to follow that in any circumstance. Especially if you are in a favorable situation like India. But if you are outside India in some other place, let's say in Middle East or in some communist country, so the other things may not be applicable, but at least Hari Nam is there. Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam eva kevalam kalo nasteva 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 kathiranyatha. So even the devotees who were in jail, Siberia, so they are chanting Hare Krishna. Is it not? So nobody can take away that. Holy name you can chant anywhere, in any part of the world, without any restriction. Nobody can stop it. So at least that must be continued. But if you stop chanting, then connection, there is no connection. It's not. So we have to get connected with the powerhouse. Otherwise there will be no Shakti. Krishna Shakti vina tar nahi pravartan, kali kaler dharma hari naam sankirtan. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति श्याम सिंधु की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। समय तो भक्त वृंद की जय। बहुत प्रेम। हरे कृष्णा।